ये उन लोगों का हाल कब हुआ और क्यों हुआ? बात क्या है, आप सोच रहे होंगे इस वक्त कि अल्लाह ताला इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं इन पे, हाँ? जिल्लत मस्कनत, फिर उसके बाद आप देखिए अगले लफ्ज़ पे भी हम जाएं तो तीसरी चीज़ को भी देख लें कि गज़ब पे गज़ब टूटे हुक्मरानों के, अल्लाह ने इनके ऊपर दरवाजे खोल दिए। आपको पता है कि बनी इसराइल की ये हिस्ट्री जहाँ तक हम अभी तक पहुँचे हैं, 40 साल का जो दौर था यूशे बिन नून उनके साथ मिले, पिछले सबक के एंड पे हमने पढ़ लिया कि बैतुल मकदस फतह हो गया, ये पहुँच गए हैं फलस्तीन के इलाके कनान में, अब वहाँ आए हैं। अब आप इमेजिन करें कि 40 साल के इस जवाल के दौर के बाद ये मुल्क को फतह करते हैं, वहाँ भी इनका अरूज होता है। अब लिख लें आगे, इस दौर में फिर हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे बादशाह वहाँ आए। हज़रत दाऊद और सुलेमान के पास बादशाहत भी थी और नबूवत भी थी। तकरीबन 100 साल का दौर गुजरा, ये कौम दुनिया में अरूज की मालिक हुई, पूरी दुनिया में इनका नाम चल पड़ा क्योंकि इन्होंने उस 40 साल के थपेड़ों से सीख लिया। उसके बाद क्या हुआ, हज़रत सुलेमान की डेथ हुई। बस जब एक लीडर गया तो वो अरूज जवाल में बदला। इसके बाद एक तो इनको नुकसान क्या हुआ कि इनको कोई अच्छा कायद ना मिला, लीडर ना मिला, दूसरी मुसीबत क्या हुई कि आपस में लड़ने लग गए, इतनी खाना जंगियां हुई कि इनका जो मुल्क था ना फलस्तीन वो दो हिस्सों में बट गया, इनकी रियासत के दो टुकड़े हो गए। एक रियासत का नाम था यहूदा यहूदिया और दूसरे का था सामरिया इसराइलियों के नाम पे, यानी इसराइल और यहूद की टर्म उस दौर में ईजाद हुई। ठीक है, दो रियासतें बनी, एक शिमाली थी एक जनूबी, यानी एक नॉर्दर्न थी और एक साउथ इलाका था। इस 100 साल के अरूज के दौर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस को तामीर किया। अब आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हज़रत सुलेमान ने हैकल तामीर किया, सारे यहूदी वहाँ आकर इबादत किया करते थे जैसे आज हम मुसलमान मक्का में जाके करते हैं। तौरात की कुछ तख्तियाँ जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इनको मिली थी वो वहाँ मौजूद थी, एक अमन की जगह थी, बड़े पुरअमन तरीके से ये हैकल यानी बैतुल मक़दस के अंदर इबादत करते। लेकिन नस्ली और इल्मी किस्म के झगड़े इतने बड़े इनके उलमा में कि आपस में लड़ने लग गए, इनके मजहबी उलमा ने लड़ना शुरू कर दिया, फिरके बने। और याद रखिए अल्लाह का एक असूल दुनिया के नक्शे पे लिखा हुआ है, ग्लोब पे, आपको दिखता है कि नहीं दिखता लेकिन ग्लोब को पढ़ेंगे ना आज जाके तो दिखेगा कि जब कोई कौम आपस में लड़ती है तो दुश्मन के मुकाबले में कमज़ोर हो जाती है, और जब ये आपस में कमज़ोर हुए तो दूसरी कौमें इनके ऊपर आ गई। वो याद होगा कि एक बाप ने मरते हुए बच्चों को कहा कि लकड़ियों का गट्ठा लाओ, फिर वो गट्ठा था, कहा इसको तोड़ो, कहा नहीं तोड़ सकते, कहा अब इसको खोलो, अब इसकी लकड़ी लकड़ी तोड़ो, सारी टूट गई, कहा देखो मेरे बेटो अगर मेरे बात मिल के एक रहोगे ना, तुम्हारे आपस में ना खराबी हो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगा, और अगर तुम टूटे बेटे जुदा बेटी आपस में, जायदादों पर बेटे बेटियां लड़ने लग जाते हैं, औरों को तो छोड़ दीजिए, घरेलू सतह पे तो ये होता है, जायदादों पर लड़ने मरने लग जाते, और जब कौमी लीडर्स के जाने के बाद कभी आप देखिए कितनी बांटे हैं ना, कहीं मजहबी बांट है कहीं सियासी बांट है, इस वक्त हम कितने मुख्तलिफ ग्रोहों में, हर एक अपने ऊपर लेके सोच सकता है, जब इतनी किस्म के झगड़े होंगे तो कौम टूटेगी। अब बनी इसराइल के साथ यही हुआ, जब ये आपस में लड़े टूटे तो बाहर दुश्मन बेवकूफ़ नहीं होते, वो इनसे भी अक्लमंद है। पहला हमला ये जो बाव बे गदब इन अला गदब है ना, मैं आपको इसकी तफसीर बता रही हूँ इस वक्त, पहला ज़बरदस्त हमला इन पर 8वीं सदी कबल मसीह हुआ, यानी हज़रत ईसा के आने से 800 साल पहले आशूरियों ने, आपने नाम ये सुने होंगे एजीरियंस बोलते हैं, इन्होंने इन पर हमला किया, खूब इनकी खबर ली। इनकी शिमाली रियासत जो थी इसराइल के नाम से सामरिया के नाम पे थी, इसको बिल्कुल नीस्तो नाबूद कर दिया, टूट गई, ये इनकी कौम का पहला है। ये सारे किस्से आगे जाके भी आप पढ़ेंगे सूरह बनी इसराइल में, अल्लाह दिखाएगा कि तुम पे एक अजाब आया फिर दोबारा। इसके बाद कुछ अरसा फिर उसके तसल्लुत में रहे, फिर गुलामी में आ गए, यहाँ से देखे ना फिरौन की गुलामी में थे, निकले इधर आके वादिया ती में ठोकरें खाई 40 साल, दूसरा दौर, तीसरा दौर बैतुल मक़दस खुल गया फतह हो गया, 100 साल तक का अरूज सुलेमान और दाऊद का। सुलेमान के दौर में खूब अरूज मिला, सारी दुनिया पे इनकी धाक थी, सब लोग इनके पास आते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की डेथ हुई तो उसके बाद ये फिर बिखरे, फिर लीडरशिप ख़त्म हुई, आपस के इख्तलाफात हुए, जब टूटे तो कौम बट गई, इर्द गिर्द जो दुश्मन थे उसमें सबसे पहले अशूरीज एजीरियंस जो होता है ASSYRIAN, इस कौम ने इन पर हमला किया, ईंट से ईंट बजा दी, इनको बिल्कुल तोड़ के रख दिया, खूब इनका मामला बिगड़ा। इसके बाद सन 600 कबल मसीह, ये सब पहला कब हुआ, 800 साल पहले, 200 साल तक ये फिर इस हाल में रहे। फिर उसके बाद जब 600 कबल मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम के आने से 600 साल पहले आशूरियों की ये सल्तनत रही, इसी में आप देखिए कि इराक के बशिंदे बेबिलियंस, नाम सुना होगा बाबलीस या बेबिलियन, उन्होंने इनके ऊपर दोबारा हमला कर दिया। ये है बाव गदब बिम्बी गदब, एक कौम अभी इनको छोड़ती नहीं थी तो दूसरी, दूसरी छोड़ती तो तीसरी, और हुआ क्या कि जूडा की जो रियासत थी दूसरी, पहली तो सामरिया पहले हमले में टूट गई, ये जो जूडा या यहूदिया रियासत थी ये दूसरे में टूट गई। इस दौर पर हैकले सुलेमानी को मुकम्मल तबाह कर दिया गया, सोने की कीमती चीज़ें उसमें से चुरा ली गई, किताबें जला दी गई, बनी इसराइल को फिर गुलाम बना लिया गया। मज़े की बात देखिए, इधर की गुलामी से मूसा ने इनको छुड़ाया, अब ये फिर गुलाम बन गए कुछ सौ साल के बाद। सख्त जलील हुए, इनके उलमा को कत्ल किया गया, इनकी सख्त शामत आई, इस तरह जलीलो ख्वार हुए कि इनके अंदर दीनी सवाल शुरू हो गया। जब कौमें इस तरह होती है ना तो फिर उनका हाल बिल्कुल इसी तरह बिगड़ जाता है कि वो टूटती हैं। इस दौर में आपको पता है कि जब ये बिखरे तो इस हद तक बिखरे कि हैकल ख़त्म, खुदा न खासा इसको इस तरह लेके मुसलमानों का खाना काबा ही ख़त्म हो जाए, इनकी तौरात तक ख़त्म हो गई। कैन यू बिलीव कि इस हिस्ट्री में एक ऐसा दौर आया कि इस ज़मीन पर तौरात नाम की कोई किताब ही नहीं थी, ख़त्म। इनके दुश्मनों ने सारी इनकी किताबें जला दी, और अल्लाह ने इनकी किताबों के साथ तो कुछ वादा किया नहीं था। नतीजा क्या हुआ, ये बिखर गए। इनको ये तक याद नहीं है कि असल में तौरात किस जुबान में उतरी थी। आपको पता है तौरात के बारे में ये बात, आज भी लोग ये नहीं जानते कि किस में। हाँ ये कहते हैं कि हिब्रू में उसका ट्रांसलेशन मौजूद है, और हमारे पास जो कुरान में और आप पढ़ रहे हैं इस वक्त ये ओरिजिनल टेक्स्ट फ्रॉम अल्लाह सुबहान तआला। किताब भूल गई, इबादत का तरीका भूल गया। आपको पता है इसके बाद आप तीसरे वाक्य बारे में पढ़ेंगे, किसी ने दौरे कुरान में सुना हो तो याद होगा, हज़रत उज़ैर का एक वाक्य, 100 साल तक सोए रहे, ये इस दौर में हुआ, किताब ख़त्म थी। फिर 100 साल के बाद जब इनके अंदर दोबारा तब्दीलियाँ, जब इस कौम का हाल क्या जो बिल्कुल आज हमारा, जब इनको मार पड़ती है ना दुश्मनों से तो ये सीधे हो जाते हैं, फिर इनमें जोश भी आता है, नमाजें भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, ज़रा इनको इज्जत मिलती है इनको रास नहीं आती। यही हुआ, जब इन पे गुलामी हुई फिर इनको समझ आई कि हमने क्या किया, फिर दोबारा शुरू हो गए वो चीज़ें जमा करने, ताबूत सकीना कि आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये जो जवाल का दौर था, इन्होंने इनको दीनी तौर पे बिल्कुल तबाह कर दिया। ये उस दौर में ना तो आखरत का कोई तसव्वुर था इनके पास, ना कोई किताब थी, ना कोई नबी था, खुद गुलाम बन गए, बिखर गए, ताकत इनकी ख़त्म हो गई, इनकी इबादत गाहों को ढहाया गया, ख़त्म, उधर अस्तबल बना दिए गए, घोड़ों के जगह। इसके बाद फिर इनके कुछ लोग जो बच्चे खुचे दीनी रहनुमा थे, उन्होंने बैठ के ये जो सिनेगॉग्स हैं ना इनके, इसका तसव्वुर उस दौर में पैदा हुआ। इन्होंने एक कानून पास किया कि जिस जगह 10 यहूदी होंगे बालिग और तौरात का एक नुस्खा होगा, वहाँ एक जगह जमा होकर हम एक सिनेगॉग बनाएंगे और अपने मज़हब का रिवाइवल करें। ये बिल्कुल वही कहानी है जो आज हम मुसलमान मुसलमानों के लिए कर रहे हैं कि आज हम जो सब तरफ पेट रहे हैं तब कुछ कुरान पढ़ें, चलो थोड़े लोग इधर बैठ के पढ़ो, थोड़े उधर पढ़ो, थोड़ी थोड़े बचे खुची चीज़ों से इन्होंने दोबारा अपने दीन की रिवाइवल की, कहा कि नहीं अब दोबारा चलो। और फिर उनके अंदर से ये सारी जो चीज़ें खराबियाँ थी, अकायद के अंदर खराबी, ये वो कर करा के उन्होंने इस तरह किया कि वो जो थोड़े थोड़े लोग थे ना उनका दीन पे होल्ड हो गया। एक खास हद तक तो उन्होंने फ़ायदे का काम किया, लेकिन दूसरी तरफ ये हुआ कि इनके मजहबी उलमा जो थोड़े से थे ना उनमें तकब्बुर और घमंड आ गया, अब वो एक और मोनोपोली शुरू हो गई, हत्ता कि फिर 400 कबल मसीह का दौर आ गया। पहले 800 था, फिर 200 साल बचे, 600, अब 400 साल। इसमें क्या हुआ कि सिकंदर आजम, आपने नाम सुना होगा, इसने रूम को फतह किया, रोमन्स आपको पता क्रिश्चियंस थे, इसराइल जो था रूमी सल्तनत का हिस्सा बन गया, कुछ बचे खुचे यहूदी थे इन पर तसल्लुत कायम हो गया, फिर अब रोमन्स के ये गुलाम बन गए, पहले किन के थे, फेरोस के, फिर किन के बन गए, अशूरियों के, और अब आप देखिए रोमन क्रिश्चियंस के हाथों ये गुलाम हो गए। लेकिन कहते हैं कि इनका नस्ली तफाखुर और अपने आप को बड़ा समझना इतना था कि उस दौर में भी कहते थे कि हम बड़े मर्तबे वाले लोग हैं, वो कहते हैं ना कि रस्सी मर कट मर जल गई लेकिन उसकी उसके बल नहीं गए। ये हालात थे जिसकी वजह से ये रोमन्स के साथ टकराए और फिर इनकी वो लड़ाइयाँ जो आपके मेरे लिए तो कोई दूर की बात ही नहीं है। पहली सदी ईस्वी 70 ईस्वी, हज़रत ईसा के बाद 70 ईस्वी में देखिए कि इन्होंने इस किस्म से ये मामला किए कि आज के हालात अगर आप अपने ऊपर लेके देखें कि अब इनकी जो लड़ाइयाँ ना क्रिश्चियंस के साथ थी, ये जो आज हम और आप समझते हैं ना कि यहूदी और नसरानी आपस में एक हैं, नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं कि तख्सबहुम जमीयन व कुलूबहुम शत्ता, सूरह हशर में आप पढ़ेंगे, तुम इनको एक समझते हो, इनके दिल टूटे हुए हैं आपस में, ये सिर्फ एक कॉमन कॉज पे जमा होते हैं और वो इस्लाम दुश्मनी है। आपस में इनकी सलीबी जंगें पढ़ लें, आप इनके हालात पढ़ के देखें कि उस वक़्त फिर अब इनका आपस में मामला बिगड़ा, इस तरह से लड़ाइयाँ झगड़े होते होते आज आप देखिए कि जब इनकी ईसाइयों से लड़ाइयाँ हुई ना, उसमें यहूद दोबारा पिटे, उस वक़्त फिर इनके तीन कबीले इधर से निकल कर मदीना के इर्द गिर्द जाके आबाद हो गए, जो आप आजकल पढ़ रहे हैं, कैनका, बनू नज़ीर और कुरैसा। ये क्यों वहाँ एक बंजर वीरान तैबा नाम की जगह पे चले गए? क्योंकि इनकी किताबों में इशारे मिल रहे थे कि अब वो वक्त करीब आ गया है कि जब आखिरी नबी आएगा और अब हमने उससे मिलकर ईसाइयों से बदला लेना है और मुशरिकीन ने मक्का से हमने निपटना है। नतीजा क्या हुआ कि ये मदीना के इर्द गिर्द जाके आबाद हो गए, और उसके बाद फिर आपको पता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लम का दौर आया और वो सारी हिस्ट्री जो आपको पीछे दी थी, बताई गई थी, वो सारी आप पढ़ते जाएं। अब ये सारी कहानी आगे भी सुनाऊंगी, कुछ चीज़ें आगे चलती जाएंगी, लेकिन यहाँ आपको बाओ भी गदब इन अला गदब की बात समझ आई कि कौमों का इनके ऊपर हमला करना, दुश्मनों का किसी कौम पे आ जाना, हमला करना, ये है अल्लाह का गज़ब। और चौथी बात, तीन बातों के बाद कहा ये हुआ क्यों, ज़ालिक बिअन्नहुम कानू यकफुरू नबी आयतिल्लाह, क्योंकि ये अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे, पहला जुर्म इनका। दूसरा, व यक्तुलून नबी न बगैर हक, ये अपने नबियों को नाहक तौर पे कत्ल कर देते थे। और तीसरा, ज़ालिक बीमा असव, तीसरा इनका जुर्म नाफरमानियाँ करते थे। और चौथा, व कानू यातदून, और ये हदों से भिड़ने वाले लोग थे। आप भी सोचते होंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है, देखिए पीछे जब आपने ये ककड़ी और साग की बातें पढ़ी ना, तो अक्सर लोग इससे मिसअंडरस्टूड होते हैं, कहते हैं क्या हुआ, इन्होंने सब्जी दवाली तो मांगी थी, लेकिन अल्लाह का इतना गज़ब क्यों है? तो यहाँ आप देखिए कि असल में अल्लाह ताला ने इनके जरायम की लिस्ट लंबी खोल के बता दी कि ये चार बड़े काम। नबी इनके पास जब आते, ख्वाहिश परस्त इतने हो गए थे कि नबियों की लाई हुई बातें, तालीमात इनकी ख्वाहिशों के रास्ते में रुकावट बनती थी। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज लोगों ने लफ्ज़ मौलवी बना लिया ना गाली, इन्होंने नबी लफ्ज़ को गाली बना लिया। ये कहते थे ये मौलवी जी, हम कहते हैं ना ये मौलवी जीने नहीं देते, तो ये बोलते थे ये नबी जीने नहीं देते। अब होता क्या कि जब कोई नबी इनके पास कोई बात लाता, हम पहले ही पारे में पढ़ेंगे कि जब भी कोई नबी इनके पास आया कि जो इनकी ख्वाहिशों के बीच में रुकावट बनता, ये उसको कत्ल कर देते। कत्ल करना इस कौम के लिए ऐसे है कि जैसे आज किसी का जाके आप सोच लें कि वीडियो गेम्स खेलना, बच्चा बच्चा इनका इस काम में माहिर है। इस तरह से नबियों को कत्ल करते थे, खुद ब खुद ही अपने ऊपर कहते हैं कि हमने इन्ना कतल ना मसीह, आगे हम पढ़ेंगे सूरह मायदा में किससे आएंगे आप पढ़ेंगे, खुद दावा करते हैं कि हमने मसीह को कत्ल कर दिया। मेरे हले 313 नबियों को एक दिन में इन्होंने कत्ल किया, आगे जाके कहीं ज़रूरत पड़ी तो आपको सुनाऊंगी। इस तरह गाजर मूली की तरह नबियों को काट के आते थे। इनके बारे में खुद आता है किताबों में इनकी कि सुबह में इतने नबियों को कत्ल करते थे और रात को जाके सब्जी बेचना शुरू कर देते थे। इट्स नॉट अ बिग डील। आखिर क्यों? क्योंकि इन्होंने मकसद भूल दिया। आज के मुसलमानों के लिए, मेरे और आपके लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़ी चीज़ दी, लेकिन हमें भी अल्लाह ने बड़ी दी। हमें भी कोई दिया अल्लाह ने ऑनर के नहीं, अल्लाह ने हमें दिया। वजअलनाकुम उम्मतन वसता, कल इनको कहा था शहादत हक की गवाहियाँ दो, दुनिया में अल्लाह का नाम बुलंद करो, आज हमें दिया, लेकिन जो उसको छोड़कर टेस्ट में पड़ गए। ये मकसद को भूलने की सजा थी। लिख ले, ये जालिका के बीमार सब है ना, इसके नीचे लिख ले बड़ा बड़ा, मकसद को भूलने की सजा थी, ख्वाहिशात के पीछे पड़ने की सजा थी। और देखिए मांगा भी तो क्या मांगा, दुनिया का भी हकीर ही मांगा। आप इमेजिनेशन में लाएं जरा, कोई किसी बादशाह के दरबार में बुलाया जाए और बादशाह के मांगो क्या मांगते हो, तो क्या मांगना चाहिए? वो मांगे ना जो आप खुद नहीं ले सकते मेहनत से। अल्लाह ने इनको इज्जत दी थी, आओ मुझसे मांगो, दुनिया का गलबा मांगो, मांगनी थी तो इज्जत मांगते, मांगनी थी तो दीन की तौफीक मांगते, मांगनी थी तो हिदायत मांगते, मांगते तो लोगों से अल्लाह के रास्ते, अल्लाह से के रास्ते में काम करने की बात मांगते, वो शरीयत के सवालात पूछते जो अब नाजिल हो रही थी इस वक्त। लेकिन इन्होंने मांगा क्या कि हमें ककड़ी प्याज और चाहिए, मकसद को भूले। आप इमेजिनेशन में लाए, मैं कहती हूँ कि सदर को तो छोड़ ही दे, अमेरिका का सदर तो छोड़ दे, सिर्फ अमेरिका का एम्बेसडर आपको मिले और कहे कि आप जो मांगे आपको मिल जाएगा, और आप सोचे कि आप उसके सामने जाके कहें ककड़ी दे दो, प्याज दे दो, आलू दे दो, कैसा लगता? ये जो इन्होंने मांगा है ना कि मिन बकली हा किसाई हा वफूमी हा वादस ये बसली, किसी होटल में जाके मांगे तो बहुत अच्छा मुतालबा, नो प्रॉब्लम मांगे, लेकिन मांग किस दरबार से रहे जहां से इनको अल्लाह के काम करने की तौफीक मांगी थी। अल्लाह ने इनको अपने काम के लिए चुना था, लेकिन इन्होंने उसको छोड़कर दुनिया के कामों को दिया। और याद रखिए, जवाल शुदा कौमों की यही निशानी होती है कि वो अल्लाह वाले नहीं बनते ना तो दुनिया वाले भी नहीं बनते। आज अपने और मेरे हालात पे रख के देख लीजिए उम्मते मुस्लिमा, हम कहते हैं ये पीछे क्यों हैं और वेस्टर्न कंट्रीज आगे क्यों हैं। आप एक पेज पे बीच में लाइन लगाएं, एक तरफ लिखिए वेस्टर्न कंट्रीज यानी डेवलप्ड कंट्रीज और दूसरी तरफ लिख लीजिए हम अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जिनको हम तरक्की पजीर मुल्क कहते हैं। आप ज़रा तकाबुल तो करें, तरक्की याफ्ता लोग खाना खाने पे कितना वक्त लगाते हैं और हम कितना लगाते हैं, वो खाना पकाने पे कितना लगाते हैं और हम खाना पकाने पे कितना लगाते हैं। आपको पता है कि अमेरिकन्स में हॉट डिनर सिर्फ वीकेंड्स पे मिलता है, उनके घरों में ये तस्वुर ही नहीं कि रोज़ चूल्हा जले। वो ब्रेड पे जैम लगा लिया, चीज़ लगा लिया, आपके भी इधर यही कुछ होगा। वो बड़े हैरान होते हैं कि आप मुस्लिम 3 वक्त खाना गर्म खाते हैं। उनके लिए आपने अक्सर सुना होगा कि हमारे देसी होटल जो हैं ये सारे इन गोरों के ऊपर चलते हैं। वजह क्या है कि उनके घरों में खाना गर्म नहीं पकता और हमारे घरों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं इस बात पे कि शौहर कहते हैं अब गर्म रोटी दोपहर में नहीं मिलती, पहली की पड़ी हुई है। हम इस पे तलाके देने को तैयार हैं कि बेगम अब रोज़ 3 टाइम पे फ्रेश खाना नहीं पका के खिला रही चूँकि कोर्स चू कर रही हैं। हालात देखिए हमारे, आज हम अपना हाल देखें, वो शादियों पर कितना खर्च करते हैं और हम शादियों पर कितना खर्च करते हैं। दूसरों को तो छोड़ दे, सिर्फ दुनिया वाले लोगों को जो कामयाब है उनको ही देख लीजिए, उनका कोई मर जाए तो उस पर कितना वक्त है और हमारी मौतों पे कितना है। वो जेवर पे कितना खर्च करते हैं और हम सोने चांदी पे कितना खर्च करते हैं, वो घरों पे कितना खर्च करते हैं और हम कितना करते हैं, फिर बताइए कि क्या हमारा हाल हमें खुद नहीं दिख रहा। और कितने फख्र से फिर हम उनके तरीके मनाते हैं, उन्हीं की वैलेंटाइन, उन्हीं के क्रिसमस, उन्हीं की बातें, उन्हीं की कहानियां मनाते हैं, उनकी बसंतें मनाते हैं, और हम तो इस पर ही बड़े खुश हैं कि हम क्या हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम भी कुछ उसी रास्ते में, हम खुश हैं चाइनीज़ पका के, हम इटालियन पका रहे हैं, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। आज देखिए कि कौन कहता है पाकिस्तान के हालात ख़राब है और कौन कहता है उम्मत मुस्लिमा पिस रही, सिर्फ न्यूज़ चैनल्स वाले कहते हैं जो आपको खबरें सुनाते हैं आके, या बेचारे अखबारों वाले जर्नलिस्ट जो हैं ना वो सुनाते हैं, वो सुनाते हैं। आम लोगों में जाके तो देखिए, आप जाइए ज़रा, छुट्टियां हो रही हैं, 10-8 दिन का ट्रिप बना ले, जा सकते हैं, देख के आइए ज़रा, आपको किस घर में जाके लगता है कि सीरिया में क्या हो रहा है और दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है। हम रोते हैं, खबर सुनते हैं, फिर उसके बाद कहते चलो लाओ मूवी निकालो, उन्हीं की मूवियाँ हम देखते, उन्हीं की, और दीन का काम की बात आ जाए तो हम कहते हैं ये तो बड़ा मुश्किल है। आप देखिए, एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, आखिरी बातें, पर सबक पूरा हो गया हमारा। आप सोचिए कि कोई बंदा 1 लाख रुपये महीना कमाता है, 1 लाख रुपया किसी की पे है, क्या वो 1 लाख रुपए की ग्रोसरी खरीद लेता है? नहीं खरीदता ना। क्या करते हम, चलो 1 लाख वाला 10,000 रुपए की ग्रोसरी खरीद लेता होगा, बाकी 90,000 जो है वो किस पे लगाते हैं, अपने लाइफस्टाइल को ऊंचा करने के लिए। ऐसे ही होता है ना, लाइवलीहुड है, लग्जरियस लाइफ है, दिस एंड दैट है। आप सोचिए कि दुनिया के लिए कमाने वाला एक बंदा जब पूरा पैसा सिर्फ खाने पे नहीं लगाता, तो अब इसको ले लीजिए आखिरत पे, ये जो वक्त हमें अल्लाह ने ज़िंदगी में दिया और जो माल दिया, इसको आप आखिरत की भी तो एक ज़िंदगी है ना, क्या हम उस सारे को सिर्फ खा पी के लगा देंगे, सिर्फ खाना पीना। मैं आप सबको एक काम दे देती हूँ, आप वीकेंड पे कर लें या भी कर लें, आप सिर्फ 1 महीना बजट ग्रोसरी करें। बजट ग्रोसरी वो क्या होती है, आप एक तो ये फिरना ठुरना छोड़ दें कि इधर से लेनी है, अब उधर से लेनी है, जहां से भी ग्रोसरी लेते हैं ना आप, अगर एक हफ्ते का, मुझे तो पता भी नहीं है कि आप लोगों के कितने खर्चे होंगे घरों के, लेकिन सिर्फ आप अपने खाने की चीज़ों में जो महंगी आइटम्स है ना उनको कट डाउन करें। मिसाल है कि आप बाजार से जो लाते हैं कोई चीज़ें, जैसे लाइक सॉसेस लेके आते हैं ना, सॉस है, घर बना लें। पहली माएँ भी तो 4 चटनी घर ही बनाती थी। आप सोचिए कि हमारे घरों में बाजार का मीट आता है ना, जो फ्रोज़न चीज़ें होती हैं, नगेट्स कह ले, फ्रोज़न जो भी चीज़ें हैं, आप कह नहीं मैं फ्रेश मीट ला के बनाती हूँ, आप एक महीने हफ्ते में हो सकता है एक दफ़ा वंस अ वीक आप जाते होंगे बाहर खाना खाने, आप कहें कि इस दफ़ा ये नहीं करना, फिर एंड ऑफ मंथ बताइएगा कि आपके कितने पैसे बचे। हमें बजट नहीं बनाने आते, आजमा के देखें। बाज दफा आप कहते हैं ना, हाय ये मीट कच्चा इतने का आया, लेकिन आप सोचे उस कच्चे मीट से 4 मील बन जाने हैं, और आप बाजार से एक बर्गर लेते हैं 5 पाउंड का आ जाता है। तो असल बात इस वक्त हम सब के लिए है, ये मेरे और आपके लिए, कि अल्लाह हम सबको एक बहुत बड़ा मकसद दे रहा है उम्मत बनने का। बनी इसराइल बाज़ाहर एक कौम लग रही है, लेकिन एक रवैया है जो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं। आज भी मुसलमानों के बच्चे ज़िबा हो रहे हैं, वल्लाही आज भी मुसलमानों पे मामले हैं, लेकिन इंसान जो है वो क्या करता है, खुद अपने आंखों से देख रहे हैं लोगों को कि क्या कुछ उनके साथ हो रहा है, लेकिन हमें कुछ फिक्र नहीं होती। क्या तस्तब्दिलून अल्लज़ी अदना हुआ बिल्लज़ी खैर, ये बात नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इसलाह कर दे। आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में?
अभी जब कंपैरिजन हो रहा था डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का, तो उसमें मुझे मेन चीज लगती है कि ये लोग बेशक हम लोग इनको बेदीन, और हमें लगता है कि ये प्रैक्टिसिंग अपने मजहब के लिए पर्संस नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि मिशनरीज पर्पस के लिए ये कितना पैसा दे रहे हैं, ये लोग कितना प्रोपोगेट कर रहे हैं। और हमारा इस्लाम में जहाँ पे कोई काफला निकला और वहीं पे पीछे क्रिटिसिज्म शुरू हो गया या उनको बंद मारने का शुरू हो गया, ये मुझे लगता है कि
जी
बेसिक।
बिल्कुल, इन्होंने सच कहा। आप देखिए मिशनरीज का इन्होंने लफ्ज़ बोला है, आगे जाके आपको कुछ कोर्स भी करवाऊंगी इंशाल्लाह, कि ये लोग अपने मिशनरी वर्क पे कितना पैसा लगाते हैं। मेरे हस्बैंड मुझे बता रहे थे, वीकेंड पे कहीं गए, पता नहीं कहाँ थे क्या हुआ, तो एकदम कहते हैं कि मेरे खड़े थे तो पता नहीं कौन आया, क्रिश्चियन था कोई, मेल थी या फीमेल मैंने ये भी नहीं सुना, तो कहते हैं कि वो मेरे पास आके तो कहता है कि डू यू नो जीसस लव्स यू, यानी उसने एकदम कहा कि जीसस तुमसे बहुत प्यार करता है। तो मैंने कहा आपने आगे क्या कहा? कहते मुझे क्या कहना चाहिए था। मैंने कहा आपको कहना चाहिए था यस आई लव जीसस टू, हम भी जीसस से बहुत प्यार करते हैं। और फिर वो कहने, हालांकि उसको ना हाल हुलिये से और इन सारी चीज़ों से दिख ही रहा था कि ये मुस्लिम है। इन्होंने कहा कि तुम्हें पता है कि मैं मुस्लिम हूँ? तो उसने कहा ऑफकोर्स तुम मुस्लिम ही लग रहे हो, लेकिन वो रात चलतों को देते हैं, इतना मटीरियल बढ़ता है। आप हैरान होंगे कि मिलियन डॉलर सिर्फ ये अपने दावा प्रोडक्ट पे लगाते हैं, और हम सदका जारिया के नाम पे जो सरासर हमारा अपना है, हम उस पर भी 10 दफ़ा सोचते हैं। आज उम्मत मुस्लिमा का जवाल इस वजह से है कि हम अपनी ज़ात पे पैसा लगाते हैं, दीन पे नहीं लगाते। हमारा दीन मुख्ताज है, मिस्कीन, और यकीन करें सौतेला बच्चा, घर में एक सौतेला बच्चा पल रहा होता है सबको पता होता है, सामने दूसरों के बहुत प्यार प्यार करते हैं हम उसको, अकेले में घूरते हैं। आज हमारा दीन के साथ ये हाल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारी इसलाह कर दे। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।